नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी, बिहार और गुजरात में 370 करने वाली बीजेपी ने क्या एक बार भी अपने मंच से कहा है कि कश्मीर में बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है? जिस कश्मीर घाटी को लेकर मोदी, योगी, शाह पूरे देश में चुनावी भाषण दे रहे हैं, उसी कश्मीर में इन तीनों की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। कश्मीर के मतदाताओं के बीच जाकर अपने विकास के काम गिनाकर वोट मांगने की ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिर क्यों बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग खड़ी हुई? हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरी एक थ्योरी रही है कि धर्म के अलावा धारा 370 की राजनीति ने हिंदी प्रदेश की चेतना का गुड़ गोबर कर दिया है। इसे लेकर युवाओं में इतना झूठ उनके भीतर बिठा दिया गया है कि अब संभव नहीं है कि वे सही तथ्य बताने पर समझ पाएंगे। उन्हें केवल कश्मीर का नाम लेते ही ताली बजाना आता है। बीते 10 सालों में उन्हें यही ताली बजाना सिखाया गया है। क्या आपको यह बात हैरान नहीं करती है कि जो बीजेपी धारा 370 हटाने को अपना सबसे बड़ा काम बताती है, वही बीजेपी कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रही? श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, राजौरी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना झंडा लेकर घूमने का मौका नहीं मिलेगा। यहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकाबला है, लेकिन बीजेपी मैदान में नहीं। 2019 में बीजेपी यहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 में मैदान छोड़कर भाग गई है। 2019 के बाद से बीजेपी के कई नेताओं की यहां हत्या भी हुई, लेकिन अब उनकी पार्टी के बड़े नेता इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके कि कश्मीर में चुनाव लड़ते, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते। अगस्त 2021 की वायर की रिपोर्ट है। अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के 2 साल बाद की इस रिपोर्ट को देखिए। 2 साल के भीतर जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के 23 नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। ये जानकारी बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने खुद ही दी थी। इस खबर के बाद हमने काफी कुछ खोजा, मगर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों को लेकर क्या कदम उठाए गए, हमलों में कमी आई या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। कश्मीर की सीटों पर नहीं लड़ना बता रहा है कि मैदान छोड़कर भागने में बीजेपी का जवाब नहीं। अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी चुनाव लड़ रही है। चर्चा चलती रहती है कि इनमें से किसी से घोषित समझौता होगा तो किसी से अघोषित। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों से अपील की, अपने लिए वोट मांगने की अपील नहीं की। अपील ये की कि कश्मीरी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़कर किसी भी दल को सपोर्ट करें। 21 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बीजेपी ने कहा था कि वह घाटी में राष्ट्रवादी दलों को सपोर्ट कर रही है। है ना कमाल की दलील? खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली पार्टी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही और कह रही कि वहां के राष्ट्रवादी दलों को सपोर्ट कर रही है। क्या आपने चुनावी मैदान से भागने वाली ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी देखी है? जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना है। दोनों का साझा उम्मीदवार अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला से खड़ा है। उमर अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नहीं। आज उमर अब्दुल्ला ने बारामूला से अपना पर्चा भर दिया है। खराब मौसम के चलते कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अनंतनाग, राजौरी में चुनाव की तारीख बदल दी गई। पहले यहां 7 मई को चुनाव होने थे, अब 25 मई को मतदान होगा। महबूबा मुफ्ती इसी सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। श्रीनगर में 23 मई को चुनाव होगा। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं 3 सीटों पर मजबूत है, इसलिए निर्णय लिया गया कि उन्हें हिलाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकसभा में बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यह 370 का जो नंबर है वो धारा 370 का है, और इस 370 में कश्मीर घाटी से बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं होगी। बीजेपी के नेता कई दिनों से राहुल गांधी को ललकार रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़े, अमेठी से भाग गए हैं, राहुल ने हार मान ली है, मगर यह नहीं बता रहे कि खुद कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी ने कश्मीर में हार मान ली है? 2019 का चुनाव ही बीजेपी पुलवामा में हुए आतंकी हमले बालाकोट स्ट्राइक से माहौल बनाकर पूरे देश में जीती थी। सेना और शहीदों के नाम पर तब भी वोट मांगा गया, अब भी बीजेपी के नेता बालाकोट के नाम पर वोट मांग रहे हैं मगर कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे तब मैं प्रधानमंत्री का एक बयान दिखाना चाहता हूं। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि नहीं हंसेंगे। अभी 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री बंगाल आए, वहां कह दिया कि बंगाल से उनका गहरा नाता है, पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुए थे या अगले में होंगे। 7 मार्च को उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक सभा की, उस दिन भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कश्मीर से उनका गहरा नाता है। बिना नाता निभाए और बताए तो प्रधानमंत्री लगता है भाषण भी नहीं देते हैं।
मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है, परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार।
भाषण में कुछ भी बोल देने की कला आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए, और अगर झूठ बोलने में समस्या आ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण रोज सुना कीजिए, पूरे मोहल्ले में आपसे सटीक झूठ बोलने वाला कोई नहीं होगा। अभी तक नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इंटरव्यू में बालाकोट स्ट्राइक गिनाए जा रहे हैं, अपने नेतृत्व की बहादुरी बता रहे हैं, मगर यह किसी को नहीं बता रहे कि कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। आपने हिंदी के तमाम थर्ड क्लास अखबारों में धारा 370 पर कितनी हेडलाइन देखी होगी, आए दिन बीजेपी के नेताओं के भाषण से लेकर धारा 370 पर हेडलाइन बना दी जाती है। अब याद कीजिए कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है, इस पर आपने कितनी हेडलाइन देखी, गोदी चैनलों में कितने डिबेट देखे। क्या किसी ने कहा कि बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग गई है? एक पार्टी जो हर भाषण में कश्मीर कश्मीर करती रहती है, वह पार्टी कश्मीर से ही चुनाव नहीं लड़ रही। गोदी मीडिया जब तब लाल चौक पहुंच जाता है, वहां जाने वाले पर्यटकों के वीडियो दिखाकर बताता है कि कितना विकास हो गया, कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई। बीजेपी अपने प्रचार में कहती है कि कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं केवल 2023 में कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। अब आप बताइए, देश भर से 2 करोड़ लोग कश्मीर घूमने जा सकते हैं मगर बीजेपी कश्मीर घाटी की तीनों लोकसभा सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती है, मैदान छोड़कर भाग गई। क्या आपको ये बात मामूली लगती है? इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किसी जगह पर पर्यटक जाने लगे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वहां सब कुछ सामान्य हो गया है। अगर कश्मीर में इतना विकास बीजेपी ने कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, तब वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ने गई? जबकि 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बुलाई गई। आज भी इस पर विवाद होता है कि लोग चलकर आए या सरकारी कर्मचारियों को लाया गया। 2019 में धारा 370 की समाप्ति के बाद पहली बार श्रीनगर में सभा हो रही थी प्रधानमंत्री की। इस बार जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो प्रचार करने क्या ही जाएंगे, आप गेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को कश्मीर में चारों तरफ कमल ही कमल नजर आने लगा, उनकी ईमानदारी की दाद देनी होगी, उन्होंने देवदार और चीड़ में कमल नहीं देखा।
50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है, ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है।
इतना गहरा नाता था तो बीजेपी को कश्मीर की तीनों सीटों से लड़ना था। कश्मीर वाले भी जान जाते कि नाता कितना गहरा है, उन्हें भी नाता दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए था। लेकिन सिंपल शब्दों में कहें तो 2024 के चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी के चुनावी मैदान से भाग गए हैं। अगस्त 2019 में धारा 370 हटाई गई, कश्मीर को लंबे समय तक के लिए सूचना विहीन कर दिया गया, इंटरनेट बंद रहा, 18 महीने तक 4G बंद रहा, अखबार बंद हो गए, कश्मीर के लोग अपनी राय जाहिर नहीं कर सके, तब बीजेपी ने देश भर को बताया कि कश्मीर में भ्रष्टाचार फैल गया था, वहां के लोग अपने नेताओं से परेशान हो गए थे, इसलिए विधानसभा समाप्त कर दी और लोग खुश हो गए। अगर यही बात है तब बीजेपी क्यों नहीं गई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ने? गोदी मीडिया इस पर कितना डिबेट कर रहा है और कश्मीर के नेताओं को भ्रष्ट बताने में कितना डिबेट किया करता था, क्योंकि उसे हिंदी प्रदेश के लड़कों को सांप्रदायिक बनाना था, कश्मीर को लेकर उनमें नफरत भरनी थी। अब गोदी मीडिया का काम हो चुका है, बीजेपी कश्मीर से भाग गई है, इसलिए गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा होगा। कश्मीर में 10 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचे तो बीजेपी ने कितना हंगामा किया। लाल चौक पर राहुल के पहुंचने का क्रेडिट भी बीजेपी मोदी जी को देने लगी, लेकिन यह तस्वीर कुछ और कह रही थी उस वक्त भी इस वक्त भी। जिस लाल चौक से बीजेपी ने अपने एक राजनीतिक मुद्दे की शुरुआत की, वहां बीजेपी अपने निशान पर वोट मांगने का इस बार हिम्मत नहीं जुटा सकी है, और उसी लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा लहराकर लौट आए हैं। लाल चौक पर मोदी के कटआउट लगा दिए गए हैं ताकि लोग सेल्फी तो ले सकें, वहां होने और दिखने का अगर इतना ही सपना देखते हैं तो घाटी की तीनों सीटों में से किसी एक सीट पर तो बीजेपी को लड़ना चाहिए था। बीजेपी गजब की पार्टी है, जिस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं करा सकी वहां पंचायत चुनाव कराने का श्रेय लेने लगी। कश्मीर में विकास कराने, सुरक्षा व्यवस्था बेहतरीन करने के दावों की पोल उस समय खुल गई जब चुनाव आयोग ने कह दिया इस समय विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था खराब है, लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव कराना आयोग की पहली प्राथमिकता होगी।
असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएनके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे, वी रेस्पेक्ट दैट, और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 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 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे, सो 90 × 12 करीब करीब 1000 कैंडिडेट हो गए, और जे एंड के में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी, वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था। बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे।
बीजेपी को आखिर किस बात का डर लग रहा है कि धारा 370 के बाद कश्मीर में चुनाव लड़ने जाएंगे तो हार जाएंगे? हारने का डर रहा होगा या जमानत जब्त हो जाने का? जमानत जब्त होने का डर है या 0 वोट मिलने का डर है? 0 तो नहीं होता, कम से कम बीजेपी का उम्मीदवार खुद को वोट तो देता ही, फिर बीजेपी को किस बात का डर था? क्या दुनिया भर में हेडलाइन बनती इसका कि 5 साल धारा 370 पर निकाल देने, कश्मीर में विकास के आसमानी दावे के बाद भी कश्मीर ने बीजेपी को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया? 2019 में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, घाटी की 3 सीटों पर हार गई थी। घाटी की सीटों पर श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला लड़ रहे थे, उन्हें 57% से अधिक वोट मिला। अनंतनाग से हसनैन मसूद ने चुनाव जीता, उन्हें 32% से अधिक वोट मिला, और बारामूला से मोहम्मद अकबर लोन को 29% से अधिक मत मिला। पुलवामा और बालाकोट से पैदा किए गए तूफान में भी बीजेपी कश्मीर में बुरी तरह हार गई थी। पुलवामा तो अनंतनाग में है, वहां भी हार गई थी। प्रधानमंत्री मोदी धारा 370 को लेकर भी एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि धारा 370 बहाल करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कांग्रेस को चुनौती दिए जा रहे हैं कि वह धारा 370 बहाल करके दिखा दे। और ये प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं कि 70 साल तक जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ, वहां दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है, वाल्मीकि समाज को पहली बार आरक्षण मिल रहा है। वो किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या उनमें हिम्मत है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि हम अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे? क्या कोई पार्टी ऐसा कहने की हिम्मत कर सकती है? यूपी के गांव में, बिहार के गांव में कश्मीर की बात करते हुए बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता शेर बहादुर बन जाता है और उसकी पार्टी कश्मीर में चुनाव लड़ने के नाम से भाग भी जाती है। शेर ही बनने का शौक है तो कश्मीर जाकर चुनाव लड़ना था। यहां जिस शेर के आने की बात हो रही है वो निश्चित रूप से मोदी जी नहीं है, पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा है। मोदी भले ही देश भर में शेर कहलाना पसंद करते हो, लेकिन श्रीनगर की गलियों में शेर बदल गया है। यहां जो शेर आ रहा है उसका नाम है वहीदुर रहमान परा। धारा 370 हटने के बाद वहीदुर रहमान भी राजनीतिक बंदी बना लिए गए, एक साल तक जेल में रहे, उसके बाद उन पर यूएपीए लगा दिया गया। दो साल तक जेल में रहने के बाद वहीदुर रहमान जमानत पर बाहर आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से उम्मीदवार हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी प्रदेश में पाठकों और दर्शकों और लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग गई है, वहां चुनाव ही नहीं लड़ रही, क्योंकि अखबार इस सवाल को लेकर रोज रोज नहीं छापेंगे, गोदी मीडिया पर भी बहस नहीं होगी। तो चुनाव समाप्त होने के दो साल बाद भी यूपी बिहार के कई लड़कों को पता ही नहीं चलेगा कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अंकिलों को पता होगा तो भी वे ये सच नहीं बताएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखेंगे ही नहीं कि बीजेपी क्यों कश्मीर से भाग गई। वे राहुल गांधी को लेकर बहस करते रहेंगे। यह कैसे प्रधानमंत्री हैं? मणिपुर में जब हिंसा हुई वहां नहीं जा सके, मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, मणिपुर के अलावा प्रधानमंत्री मोदी क्या अब कश्मीर भी नहीं जाएंगे? कोई भी गेस कर सकता है कि कश्मीर में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है तो वहां प्रचार करने क्यों जाएंगे। खुद कश्मीर से गायब हैं, लेकिन हर भाषण में कश्मीर कश्मीर रटते हैं। बीजेपी के राष्ट्रवाद की थ्योरी की बुनियाद धारा 370 से शुरू होती है। उस कश्मीर से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकी। 10 साल तक भारत की राजनीति में एक छत्र राज किया नरेंद्र मोदी ने। गोदी मीडिया गुलाम की तरह हाजी हाजी घंटी बजाता रहा, सारी एजेंसियां नतमस्तक रहीं, तब भी मोदी कश्मीर घाटी में 3 उम्मीदवार नहीं उतार सके। आप इसी साल 7 मार्च का उनका भाषण सुनिए, लगेगा बाराबंकी में 10वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र ललित निबंध लिखकर लाया है। वही सब बातें कि जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र नहीं, भारत का मस्तक है और एक उठा हुआ मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। सर जी, जब आपने ही ये मस्तक उठा दिया है तो अपनी पार्टी का झंडा लेकर कश्मीर में चुनाव भी लड़ जाते, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मस्तक भी उठ जाता। अजीब अजीब बातें उस दिन प्रधानमंत्री करने लगे। इनके भाषण की कॉपी अगर कोई मास्टर ठीक से चेक कर दे तो 10 में से 3 नंबर भी ना दे।
आपने जरूर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा, मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का।
कुछ ना कुछ कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल निकाल लिए और बहुत कुछ होने के नाम पर कुछ ना कुछ ही बताते रहे। अपने भाषणों में धारा 370 हटाने को इन्होंने परिवारवाद से जोड़ दिया। कर्नाटका, बिहार और कई जगहों पर परिवारवादी दलों के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन कुछ परिवारों को लाभ मिलता था इसलिए धारा 370 हटा दी। इस तरह की बातें करते हैं। हर बात में जोर से हंसने की जरूरत नहीं है, सीरियस होकर भी सवाल पूछिए कि सब अच्छा कर ही दिया तो कश्मीर की जनता का विश्वास क्यों नहीं हासिल कर रहे हैं, उससे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं।
दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार, वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है।
जब बीजेपी कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है तो विधानसभा में क्या ही लड़ेगी? अभी उसके कार्यकर्ता हताश हो चुके होंगे। सवाल यह भी उठता है कि जब बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो क्या वह विधानसभा का चुनाव कराएगी? पूछ तो सकते हैं ना। पिछले साल 31 अगस्त को धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उस दिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा वे सटीक तारीख नहीं दे सकते कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कब बहाल होगा। चुनाव आयोग जमीन पर काम कर रहा है, वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। गुजरात के आनंद में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण आपको सुना तो रहा हूं, लेकिन वे कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। कोई इनसे पूछ ही नहीं रहा है कि आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ सके, बल्कि ये सवाल सब तक नहीं पहुंच पाए इसलिए प्रधानमंत्री कश्मीर पर कुछ और बोले जा रहे हैं ताकि हेडलाइन में उनकी बात छप जाए। यह बात छपे ही नहीं कि बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग खड़ी हुई है। अब आप इस वीडियो को देखिए। राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर दिखाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि संविधान रखकर नाच रहे हैं। इतनी खराब भाषा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं होगी तो आप बताइए किसकी होगी?
आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शाहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आज भर, देखा होगा आपने। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था? मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शाहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है।
क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के फैसले की समीक्षा की सुनवाई के वक्त क्या कहा था? यही कहा था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को अलग नहीं बनाता है, धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को संप्रभु नहीं बनाता है। धारा 370 का मतलब यह कभी भी नहीं था कि कश्मीर भारत से अलग है, संप्रभु है या स्वायत्त है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य के पास अनुच्छेद 370 के तहत किसी भी प्रकार की संप्रभुता नहीं थी, उसके पास आंतरिक संप्रभुता के भी अधिकार नहीं थे। अनुच्छेद 370 संप्रभुता का लक्षण नहीं है या असिमेट्रिक फेडरलिज्म का लक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को इतना भाव ही नहीं दिया, मतलब इतनी बड़ी बात ही नहीं थी कि इसे हटाकर बीजेपी सीना फुलाए घूम रही है जैसे पहाड़ खिसका दिया हो और कश्मीर घाटी की तीनों सीटों को छोड़कर मैदान से भाग खड़ी हुई है। धारा 370 की जगह हमने अनुच्छेद 370 का कम इस्तेमाल किया, मगर यही सही होगा। आम बोलचाल की भाषा में धारा धारा ही चल पड़ी है, तो हम भी धारा में प्रवाहित होकर धारा 370 बोलने लगे, लेकिन सही शब्द अनुच्छेद 370 है। गुजरात के आनंद में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है उसका हिस्सा हमने इस वीडियो में सुनाया है, आप फिर से उसे सुनिएगा। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। बेहतर है आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को हटाने की वैधानिकता को लेकर जो लंबी बहस चली, फैसला आया, उस फैसले की आलोचना भी हुई, उसे टाइम निकालकर पढ़िए। इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, बेहतर है आप उस वीडियो को भी देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या क्या सवाल उठे थे। YouTube पर आप रवीश कुमार ऑफिशियल पर जाइए, वहां 18 दिसंबर का यह वीडियो आपको मिल जाएगा। धारा 370 पर आप हमारे 11 और 12 दिसंबर के दोनों वीडियो जरूर देखिए। कश्मीर की सच्चाई बाकी भारत से बहुत दूर है। बाकी भारत कश्मीर के नाम पर भीड़ में बदल जाता है, क्योंकि उसके पास जानने के लिए इसी लेवल के भाषण होते हैं जिस लेवल के भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अखबारों में जो कूड़ा छपता है उसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, कश्मीर में ड्रग्स का जाल इस दौरान काफी फैल गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि ड्रग्स की जब्ती 2019 की तुलना में 2022 में दोगुनी हो गई, जब्ती भी बढ़ गई और ड्रग्स के शिकार लोगों की संख्या भी। मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच SMHS अस्पताल के OPD में इनकी संख्या 75% बढ़ गई है, 41,000 से अधिक मरीज आए। रिपोर्ट में लिखा है कि 15 से 30 साल के युवकों में नशे की लत बुरी तरह फैल चुकी है। इतनी सुरक्षा के बीच कश्मीर में ड्रग्स का जाल फैल गया। कैसे फैल गया, कौन पूछेगा, किससे पूछेगा। मोदी और शाह हमेशा कहते हैं कि घाटी में हालात सामान्य हैं, तो इतने सामान्य हो गए हैं तो वहां बीजेपी चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा सकी। इस बात को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के दौर में विपक्ष को खत्म कर दिया गया, मीडिया को खत्म कर दिया गया, जनता को अंधेरे में रखा गया। इसके बाद भी कश्मीर में नरेंद्र मोदी की बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए 3 उम्मीदवार नहीं उतार सकी। बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।